سرخیوں میں یہ آکاشوانی ہے, پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے کیندری منتری منڈل کے نرنیوں پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں آرتھک وشلیشک شرد کوہلی, کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں ویبھو جے شریواستو.
پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو میں دیش کی کیبنٹ نے کچھ ضروری فیصلے لیے. دلی میں لال قلعے کے پاس وسفوٹ کے سمبندھ میں کیبنٹ نے پرستاو پارت کیا. کیندری منتری منڈل نے 25,060 کروڑ روپے کے پریوے کے ساتھ بھارت کے نریات ایکو سسٹم کو سدھڑ کرنے کے لیے نریات سموردھن مشن کو منظوری دی. منتری منڈل نے ہرت ارجا کے لیے الگ الگ کھنجوں کی رائلٹی دروں کو یوکتی سنگت بنانے کے لیے منظوری دی, اور کیبنٹ نے نریاتکوں کے لیے رن گارنٹی یوجنا کو بھی منظوری دی. ان سبھی فیصلوں کا کتنا گہرا اثر پڑے گا دیش کی ارتھ ویوستھا پر اور کیا لابھ ہوں گے دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے آنے والے سمے میں, ان سبھی چیزوں پر ضروری بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آکاشوانی اسٹوڈیوز میں ایک بے حد خاص مہمان. ہم جڑ رہے ہیں ورشٹ آرتھک وشلیشک شری شرد کوہلی جی کے ساتھ. شرد جی, آکاشوانی کے اسٹوڈیوز میں بہت بہت سواگت ہے.
نمسکار.
سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں کیندری منتری اشونی ویشنو کے یہ شبد.
تین بڑے فیصلے لیے گئے. سب سے پہلا, ایک نیا ایکسپورٹ پروموشن مشن لانچ کیا گیا ہے. 25,060 کروڑ روپے کا اس کا آؤٹ لے ہے, 6 سال کی اس کی اودھی ہے, اور اس میں بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے پورے کمپلیٹ ایکسپورٹ کے ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے کا اس میں ڈیسیژن لیا گیا ہے. پرائیورٹی ان سیکٹرز کو دی جائے گی جن کے اوپر ابھی ایک ایڈورس امپیکٹ ہے, جیسے ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, جیمز جیولری ہے, انجینئرنگ گڈس اور میرین پروڈکٹس ہیں. دو اس کے پلرز ہیں. پہلا پلر ہے نریات پروتساہن اور دوسرا ہے نریات دشا. اس کا کمپلیٹ ڈیجیٹل امپلیمنٹیشن ہوگا. دوسرا, کریڈٹ گارنٹی اسکیم ایکسپورٹرز کے لیے. آج کی جو پرستھتیاں ہیں ان پرستھتیوں میں کریڈیٹرز ہمارے ایکسپورٹرز کو کیسے سپورٹ کریں, اس کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم 20,000 کروڑ روپیز کی آج اپروو ہوئی ہے کیبنٹ میں مانے پردھان منتری جی کے نیتتو میں. اور تیسرا, ہمارے جو کریٹیکل منرلز کا پروڈکشن ہے اس کے اوپر قانون میں ایک امینڈمنٹ کیا گیا ہے, جس سے کہ کریٹیکل منرل پروڈکشن کین انکریز ان ا کنٹری.
شرد جی, سب سے پہلے بات کرتے ہیں منتری منڈل کے اسی فیصلے کے بارے میں. بھارت کے نریات ایکو سسٹم کو سدھڑ کرنے کے لیے نریات سموردھن مشن, ایکسپورٹ پروموشن مشن کو منظوری دی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں, کتنا ضروری ہے یہ؟
بہت ہی اچت سمے پہ میں سمجھتا ہوں یہ گھوشنا کی گئی ہے, کیونکہ امریکہ نے جس پرکار سے بھارت کے اوپر 50% ٹیرف لگایا اور اس کی کافی چرچا ہوئی, بہت سارے ایکسپورٹرز پربھاوت ہوئے. خاص کر امریکہ کو جو زیادہ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کچھ تو ایسے ایکسپورٹرز تھے جو کہ خالی امریکہ کو نریات کرتے تھے. اس میں ٹیکسٹائلز ہو گیا, فٹ ویئر ہو گیا, انجینئرنگ گڈز ہو گیا, مرین پروڈکٹس ہو گیا, جیمز اینڈ جولری ہو گیا. یہ کچھ ایسے سیکٹرز تھے جو کہ پوری طرح سے پربھاوت ہوئے تھے, کیونکہ کچھ ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس اس پرکار کے تھے ساؤتھ میں, گجرات میں, کوسٹل انڈیا میں, جو کہ خالی اور خالی جس پرکار میں نے کہا امریکہ کو کرتے تھے. تو بہت ساری میٹنگز ہوئی ایکسپورٹرز کے ساتھ جب سے یہ ٹیرف لگا. انیکوں بار مجھے لگتا ہے منترالے نے ایک طرح سے ان کو یہ اشورنس دلائی, ان کو یہ وشواس دلایا کہ سرکار آپ کے ساتھ ہے, اور انیکوں پلیٹ فارمز پر یہ بھی چنتن کیا گیا کہ ان ایکسپورٹرز کے لیے کیا وکلپ ڈھونڈے جا سکتے ہیں. امریکہ کے علاوہ یورپ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, آسٹریلیا ہے, افریقہ ہے, مڈل ایسٹ ہے, ان سب کی مارکیٹس, اور لگ بھگ 40 دیشوں کے ساتھ سمپرک ستھاپت کیا گیا بھارت سرکار دوارا اور ان ایکسپورٹرز دوارا اپنے لیول پر بھی, اور وبھن جو ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسلز ہوتی ہیں ان کے دوارا بھی, کہ ہم جو نقصان وہاں سے ہوا اس نقصان کی بھرپائی ہم دوسری مارکیٹ سے کریں. اسی لیے میں نے آپ کو جو شروع میں کہا کہ بہت ہی اچت سمے پر یہ آیا ہے, یہ جو ایکسپورٹ پروموشن مشن ہے کس پرکار سے مدد کرے گا ایکسپورٹرز کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ اگر میں ادھارن لوں تو بہت ساری ایگزیبیشنز آرگنائز کی جاتی ہیں, آپ نے دیکھا کہ اس کے دو دھیے رکھے گئے, ایک تو ان کو دشا دینا اور ایک پروتساہن دینا. تو دشا دینے کا یہاں پر تاتپریہ ہے کہ ان کے لیے نئی مارکیٹس ڈھونڈنا, کہ مان لیجئے کوئی مرین پروڈکٹس والا جو کہ ایکسپورٹر ہے وہ امریکہ میں اپنا سامان بھیجتا تھا, یا سورت میں ادھارن کے طور پر جیمز اینڈ جولری والا جو کہ امریکہ میں سامان ڈھونڈتا تھا, تو اس کو ہم نئی دشا دیں. اب دیکھیے نئی دشا دیکھنے کے لیے ایکسپورٹرز کو وتیہ سہایتا چاہیے ہوتی ہے. آپ کو وہاں جا کے ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو وہاں جا کے اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو وہاں جا کے پریزنٹیشنز دینی پڑتی ہے کہ دیکھیں بھارت کا بنا سامان اتنے قیمت پر آتا ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے, پہلے یہ امریکہ میں خریدا جاتا تھا, وغیرہ وغیرہ ایسی سب باتیں کی جاتی ہیں. اس کے لیے دھن ارجت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. और यही इस मिशन का लक्ष्य है कि उनको नई दिशा दी जाए। दूसरा, आपने ध्यान दिया होगा अभी मंत्री महोदय ने कहा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन यहां पर है कि जो इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, स्टॉक, जो भी इन सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ये क्या और भी प्रोडक्ट्स में, उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि वो अपनी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, हमारी देसी मार्केट में वो सामान बेचते हैं, पर वो इस बात को अभी नहीं जानते, इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनका माल विदेशों में भी उतना ही पसंद किया जाएगा जितना भारत में किया जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा किया जा सकता है। तो इस प्रकार वो अपने व्यापार को विस्तृत कर सकते हैं, अपने व्यापार को ग्लोबल, जिस प्रकार कहते हैं वोकल फॉर ग्लोबल, ग्लोबल फॉर वोकल, जो हम बात करते हैं बार बार, उसको जिस भी प्रकार जो बोलता है, मैंने लोगों को दो तरीके से बोलते सुना है, पर मूल उसका अर्थ यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर लेके जाएं। तो ये दिशा और प्रोत्साहन दोनों देगा। दूसरा वैभव इसमें जो इसी एक्सपोर्ट से संबंधित है, वो मैं यहीं पर जिक्र करना चाहूंगा, जो कि हाल में बहुत सुनने में आया, जैसा मैंने बताया, जब से अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाए तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का काम रुक गया। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझे तो हम ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, जिसको हम CGSC कह रहे हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ऑफिशियल तौर पे इसको कहा जाता है, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, इसको अगर हम तथ्य से समझें तो मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट इंजीनियरिंग गुड्स का अमेरिका भेजते थे, अब उसके लिए आपके पास मशीनरी थी, आपके पास रॉ मटेरियल था, अब मान लीजिए आपका वो प्रोडक्ट वहां नहीं जा पा रहा है और आपको उदाहरण के तौर पर यूरोप से ऑर्डर मिल रहा है, जो कि वो ये चाहते हैं कि इसके लिए मटेरियल दूसरा लगाया जाए, इसके लिए कुछ मशीन में फेरबदल किया जाए, तो अब उस एक्सपोर्टर को अपनी फैक्ट्री में, जहां पर उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पर उत्पादन वो करता है, वहां पर उसको पैसा लगाना पड़ेगा। यहीं पर ये CGSC स्कीम आपके लिए काम आएगी कि आप इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि आसान दरों पर और आसान टर्म्स पर आपको ये उधार दिया जाएगा, अलग अलग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस उधार को डिसबर्स करेंगे, आप जाके उस पैसे को लेके और अपनी उत्पादन क्षमता और उत्पादन की किस्म बदल सकते हैं, थोड़ा फेरबदल अगर आपको करना है, तो उसके लिए हम उसको फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, तो आपको वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस मिलेगा। और अगर आपकी क्षति हुई है, यानी कि आपका स्टॉक ऐसा रह गया जो अमेरिका अब नहीं जा पा रहा है, तो उस स्टॉक को आपको कहां बेचना है, मान लीजिए कम दरों पर बेचना है, तो ये पैसा बहुत जरूरी तरीके से आपके लिए काम आएगा। और ये मैं समझता हूं एक तरह से लाइफ लाइन की तरह ये पैसा बनेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स कई कई बहुत थिन मार्जिन पर, यानी कि बहुत ही कम मुनाफे पे काम करते हैं, वॉल्यूम पर ऑपरेट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा भी अगर पैसा कम पड़ जाए तो उनका वो जो चक्का घूम रहा होता है वो रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, CGSC जिसको हम कह रहे हैं, ये दोनों स्कीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, एक तरफ प्रोत्साहन और दिशा मिलेगी, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। दोनों को मैं वैभव जोड़ के देखूं तो 45,060 करोड़ रुपया केवल और केवल निर्यातकों के लिए एलोकेट करना सरकार की तरफ से मैं बहुत बड़ा कदम और फैसला मानता हूं।
शरद जी, सबसे पहले ऋण गारंटी की योजना और उसके बाद निर्यातकों के लिए इतना सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार करना, जैसा आपने कहा, आपको क्या लगता है कि भारत विश्व गुरु जो बना है और आगे जितना ज्यादा भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, अब जितने भी अहम फैसले हैं वो भारत को ध्यान में रख के किए जाते हैं, इस बीच कितना जरूरी है कि भारत के उत्पादक और निर्यातक दोनों को ही इसका लाभ पहुंचे और साथ ही साथ भारत का ये जो अमृत काल है इसमें इन दोनों ही उत्पादकों और निर्यातकों का कितना अहम योगदान है और क्यों ये जरूरी है?
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मेक इन इंडिया स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी, हमें याद होगा एक शेर जिसका एम्बलेम है, उसका मोनोग्राम है, उसमें मशीनी पुर्जे का बना हुआ वो शेर है, तो अगर चीन के बाद दूसरा कोई देश दुनिया की फैक्ट्री बनने की क्षमता रखता है तो वो भारत है। और हमने देखा हाल में, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे और भी बहुत सारे उपकरण हो, बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं हो, भारत का बना सामान दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। बस जरूरत क्या है कि हमारे यहाँ जो उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो कई दफे एक ही लाइन पर बहुत साल तक चलते रहते हैं, या तो एक ही लाइन पर चलते रहते हैं, या बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको विदेशों में अपना माल बेचने का मौका नहीं मिलता, उनको ये समझ नहीं आता कि हम किस प्रकार अपने माल को विदेश में जाकर बेचें, कि उनका माल शायद यहां से भी ज्यादा वो वॉल्यूम वहां पर जनरेट कर सकते हैं, भारत से ज्यादा माल वो वहां जाके बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको बढ़ावा देने में ये दोनों स्कीम बहुत ही सार्थक रहेंगी और ये वो अपॉर्चुनिटी या अवसर निर्यातकों को देंगी जो अवसर आज तक उनको नहीं मिला था। तो सुनने में देखिए एक स्कीम लगती है और हम लोग कई दफे क्या होता है कि बहुत अच्छी स्कीम्स आती हैं, हम लोग खाली उसको सुन के कि भाई कैबिनेट ने फैसला किया है तो जिसको फायदा पहुंचेगा पहुंचेगा, पर जब आप इसका गहन चिंतन करते हैं और उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है उस व्यक्ति के लिए जैसा कि मैंने कहा ये एक जीवन रेखा साबित होगा।
बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा में भारत आगे निकले, कम्पेटिटिव एज मिले, साथ ही साथ लागत कम हो, एक बेहद अहम इस फैसले की वजह यह भी है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो भारत में लगातार बढ़ें, भारत का युवा नई चीजों को सीखे, नई इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े और लगातार भारत की जो बढ़ती विकास दर है उसमें योगदान दे। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ये रोजगार अवसरों के लिए?
बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, नए नए जो यूनिट्स सेटअप होंगे, क्योंकि बाहर से जब मांग आएगी तो आपको अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, जिसको हम प्रोडक्शन कैपेसिटी कहते हैं। और जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे आपको नए हाथ चाहिए होते हैं, नए लोग चाहिए होते हैं, तो रोजगार का सृजन होगा, भारत का दबदबा बनेगा विश्व में, भारत का नाम होगा, भारतीय प्रोडक्ट्स का नाम होगा, देश को फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू आता है इसके जरिए, हमको राजस्व आएगा जो कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे भरेगा। उसके अलावा भारतीय उत्पादों को भारतीय व्यवसायिकों को बाहर जाके अपना नाम बनाने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ चौतरफा बेनिफिट है इसका, चौतरफा लाभ है, और सभी एक्सपोर्टर्स आज आपको और हमको वैभव आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये व्यक्तिगत तौर पे भी संदेश देना चाहूंगा कि आप इन स्कीम्स का गहन अध्ययन करें, हमने जो बातचीत करी उसको सुने, और आपका उत्पादन प्रोडक्ट है जो भी आप बनाते हैं ये देखिए कि उसमें कहाँ कहाँ ये अप्लाई करती है और किस किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। विशेषता अगर आपको अमेरिका के उस नियम, उस कानून की वजह से, उस पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ है तो।
जी शरद जी, मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण ग्रेफाइट, सीजियम, रूबीडियम और जिरकोनियम खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी मंजूरी दी। समय के साथ चलने की जब बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण खनिज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं, साथ ही साथ इनके जो रॉयल्टी दर हैं इनको युक्तिसंगत बनाकर हम भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं जो इन क्रिटिकल मिनरल्स, इन जरूरी खनिजों से जुड़ी हुई हैं, उनको कितना ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं?
क्रिटिकल मिनरल्स का हाल में बहुत जिक्र चल रहा है, दुनिया भर में सुनने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन मिनरल्स का जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके डिफेंस इक्विपमेंट से लेके बहुत सारी ऐसी चीजों में हो रहा है, एनर्जी रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उससे लेके, कि इनकी अचानक से ऐसा लगने लगा कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स आज तक कहाँ थे और इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती थी, क्योंकि अब इनका उपयोग इस प्रकार होने लगा कि वो अब दुनिया की जरूरत बन गए और इसके बिना दुनिया का गुजारा करना मुश्किल हो गया, ऐसा महसूस हुआ। और हम देखें तो चीन ने अपना वर्चस्व इसमें जमा रखा है, ऐसा नहीं है कि ये भारत में नहीं है, भारत में क्योंकि हमने इतने वर्षों तक हमने उतना ज्यादा शायद इस पे ध्यान नहीं दिया। अब भारत सरकार ने ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन जिसको हम कहते हैं, इसमें रॉयल्टी रैशनलाइजेशन नाम से जो उन्होंने स्कीम कैबिनेट ने कल फैसला दिया है, इसका अर्थ यह है कि जो खोज में अपना एफर्ट लगाएंगे, अपनी मेहनत लगाएंगे और खोज के निकालेंगे, उनको रॉयल्टी अच्छी मिलेगी, क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता है कि इन मिनरल्स की कमी नहीं है, सिर्फ हमें इसकी खोज को बढ़ाना है, हमें खोज के लिए जो तकनीक लगती है उस तकनीक को और ज्यादा विकसित करके इन मिनरल्स को हमें निकालना है। अगर भारत भी इसमें एक उत्पादक बन जाए, हमारे यहाँ जो छुपे हुए मिनरल्स हैं ये उभर के सामने आ जाए, खनन हो सके, तो मुझे लगता है भारत भी उस पोजीशन में आ जाएगा दुनिया में। तो मुझे लगता है कि इन मिनरल्स में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कहते हैं कि निर्भरता कभी भी अच्छी नहीं है, जितने हम आत्मनिर्भर हो जाएं और जितनी जल्दी हो जाएं उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर ये निर्णय लेना कैबिनेट का कि हम रॉयल्टी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी जो मिनरल एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो आगे आएंगे और वो इसका लाभ उठाएंगे, और अगर भारत में हम आत्मनिर्भर हो गए, मुझे लगता है भारत में वो दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा।
जी शरद जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी फैसलों को इतने आसानी से, इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में